मेरे अभिन्न मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, फिलहाल हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं, न समझे जाने की पीड़ा। इसे आप इस रूप में भी कह सकते हैं, न सुने जाने की पीड़ा, न सुने जाने की पीड़ा। यह जो पीड़ा थी, ये हमारे वेद व्यास जी की पीड़ा थी, जिन्होंने महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा। जब आप महाभारत को उठा करके पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसके पहले ही पृष्ठ पर आपको वेद व्यास जी की इस पीड़ा के स्वर सुनाई देंगे। और वो कह रहे हैं कि मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूं लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं। मैं हाथ उठा उठा करके लोगों से कह रहा हूं लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं। सोच करके देखिए, न सुने जाने की पीड़ा। आपको नहीं लगता कि न सुने जाने की पीड़ा न समझे जाने की पीड़ा से भी ज्यादा गहरी है, ज्यादा तकलीफ देने वाली है? कम से कम अगर सुन लिया जाए, न समझा जाए तो ठीक है, ये तो विश्वास रहता है, आप अपने आप को राहत दे सकते हैं कि यार कम से कम मुझे सुन तो लिया गया, नहीं समझा गया तो कोई बात नहीं, शायद आगे समझ जाए। लेकिन वेद व्यास की पीड़ा तो यह है कि उन्हें सुना ही नहीं गया। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों। आप सब, हम सब, हर कोई इस पीड़ा से गुजर रहा होता है। आपको नहीं लगता कि यदि हम इस पर थोड़े से विस्तार से बात कर सकेंगे तो शायद बहुत अमूल्य मोती हमारे हाथ में आ जाए? इसलिए मैंने आप सबसे अपील की है कि आप सब अपनी अपनी बातें मुझे लिख करके भेजें, और मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोगों ने इसकी शुरुआत कर दी है। लेकिन एक अनुरोध मैं आप सबसे जरूर करना चाहूंगा कि आप इसमें मेरा साथ दें, इस यात्रा के सहयात्री बने, जल्दबाजी न करें। और साथ ही यदि आपने इसे सुनना शुरू कर दिया है तो प्लीज बीच में ना छोड़े। हाँ, उस रूप में आप छोड़ दें कि नहीं अब मुझे इसे सुनना ही नहीं है, तब तो छोड़ दें। लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं तो प्लीज बीच में ना छोड़ें, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो कड़ी टूट जाएगी, फिर समझने का काम नहीं हो सकेगा। दोस्तों, आज मैं आप सबसे ईसा मसीह के जीवन के उस प्रसंग की चर्चा करने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है, नहीं के बराबर मालूम है। और मुझे लगता है कि यही वो प्रसंग है जिसे हम ईसा मसीह की सबसे बड़ी पीड़ा का कारण समझ सकते हैं। इस प्रसंग को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही संवेदनशील प्रसंग है। आपको मालूम है, मैं बता चुका हूं कि किस तरह से ईसा मसीह को अपने ही एक शिष्य के विश्वासघात के कारण बंदी बना लिया गया। ईसा मसीह बंदी बना लिए गए। उस समय जो रोम साम्राज्य था, बहुत बड़ा साम्राज्य था, और ईसा मसीह जिस क्षेत्र में काम कर रहे थे, इसराइल वाला एरिया था, वो रोम के अंतर्गत आता था, रोम साम्राज्य के अंतर्गत। तो इस क्षेत्र के एक गवर्नर हुआ करते थे, पिलाते गवर्नर थे, और उस गवर्नर ही सर्वेसर्वा होते थे, जैसे हमारे समय में सामंत सर्वेसर्वा होते थे। तो ये जो पिलाते थे, ये नहीं मानते थे कि ईसा मसीह अपराधी हैं। ईसा मसीह कहते क्या थे? कुछ नहीं, केवल 2.5-3 साल तक तो उन्होंने अपना काम किया है बस। लोगों को बताते थे कि धर्म क्या है, क्योंकि उस समय जो स्थापित धर्म था, जो प्रचलित धर्म था, वो एक तरीके से भ्रष्ट हो चुका था। तो आचरण की बात करते थे, अच्छे व्यवहार की बात करते थे, लोगों की मदद करने की बात करते थे, यही सब कहा करते थे वो। और वहां के जो मठाधीश थे, जो तथाकथित धार्मिक नेता थे, उन्हें लगता था कि ईसा मसीह तो उनकी सत्ता को हिला रहे हैं, ये तो लोगों को भड़का रहे हैं। इस अपराध में उन्हें जेल में डाल दिया गया। चलिए, यहां तक आपको मालूम है। दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि पिलाते नहीं मानते थे कि ईसा मसीह अपराधी हैं, और यहां तक कि उनकी पत्नी भी नहीं मानती थी कि ईसा मसीह अपराधी हैं। यहां तक कि जिस दिन इन्हें सजा सुनाई गई, उसके रात बकायदे उनकी पत्नी को एक स्वप्न आया, और ये स्वप्न उन्होंने पिलाते को बताया भी कि मुझे स्वप्न आया है कि जो ईसा मसीह है वो पूरी तरह से निर्दोष है। और पिलाते तो खुद मानती थी, तो अब वो क्या करे? तो वहां एक कस्टम था, एक परंपरा थी, एक प्रथा थी। पिलाते ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की। उसमें यह था कि आप पब्लिक से पूछिए, पब्लिक से जजमेंट लीजिए। तो पब्लिक को इकट्ठा किया गया, और पिलाते ने उसमें जो पहला वाक्य कहा था वो ये है कि आप सब ये बताइए कि ईसा मसीह का दोष क्या है। देखिए, वो प्रश्न क्या कर रहे हैं, ईसा मसीह का दोष क्या है? और बदले में जो पब्लिक है वो क्या कहती है, क्या कहती है कि ईसा मसीह को क्रूसीफाई किया जाए, सूली पर चढ़ा दिया जाए। एक बात जो मैंने जानबूझ करके यहां छोड़ दी है रोमांच पैदा करने के लिए, वो ये है, इस कस्टम की एक और बात थी। दो लोगों के नाम लिए जाते थे, ये दो अपराधी हैं, इन दो अपराधियों में से एक अपराधी को छोड़ा जा सकता है जिसे पब्लिक कहेगी। तो एक तो ईसा मसीह थे, दूसरा अपराधी कौन था? दूसरा अपराधी था बारबास। बारबास जो माना जाता है कि बहुत ही नोटोरियस, बहुत ही खतरनाक किस्म का अपराधी था। कहा जाता है कि उसने तो पता नहीं कितनी हत्याएं भी की थी। तो अब पूछा गया कि भाई इन दोनों में से किसे छोड़ा जाए, बारबास को छोड़ा जाए या ईसा मसीह को मुक्त किया जाए? पब्लिक क्या चिल्ला रही थी कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया जाए। ईसा मसीह के बदले किसको छोड़ा गया? उस खूंखार, उस नटोरियस, उस हत्यारे अपराधी को छोड़ दिया गया। जरा सोच करके देखिए कि ईसा मसीह को क्या लगा होगा, क्योंकि पब्लिक उसके साथ नहीं है। शासक साथ में है लेकिन पब्लिक उसके साथ में नहीं है। और ईसा मसीह को यहाँ किससे ज्यादा खतरनाक अपराधी समझा जा रहा है, बड़ा अपराधी समझा जा रहा है, उस हत्यारे से भी बड़ा अपराधी। आपको क्या लगता है कि ये कम बड़ी पीड़ा होगी कि मुझे समझा नहीं गया? संवेदना के साथ इस पर विचार करके देखिए, तब आप सच में ईसा मसीह की पीड़ा को समझ पाएंगे। तो दोस्तों, इस विषय के बारे में बस इतना ही। एलएम राजदूत के बारे में जिन मेरे नौजवान साथियों ने अपने नाम भेजे हैं, उनके नाम मैं यहाँ लेना चाहूंगा। प्रशांत पांडे हैं, आलोक शुक्ला हैं सीडी से, वसीम आलम अंसारी हैं दिल्ली से, हिमांशु गुप्ता हैं, सिमरनजीत सिंह लुधियाना से हैं और प्रद्युम्न गुप्ता सीडी से हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, अब इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।